नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार आज 4 खेल प्रतियोगिताओं में होगा शामिल। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। बिहार में भी होगी नई किस्मों से खेती। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा समेत उत्तर पूर्व जिलों में आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन समारोह में वीडियो संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही।
आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए, स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में खेल बजट में 3 गुना वृद्धि की है। सरकार ने खेलों के लिए इस वर्ष 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर उन्होंने कहा कि अब खेल प्रतियोगिताएं पूरे साल आयोजित किए जाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को मुख्य धारा के अध्ययन का हिस्सा बनाकर मान्यता दी गई है। श्री मोदी ने बिहार में सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास पर कहा कि पटना गया राजमार्ग पर एक स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जा रही है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है।
पटना में कल भव्य समारोह के साथ अंडर 18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई। लड़कियों और लड़कों की श्रेणियों में 8500 से अधिक युवा खेल प्रतिभाएं विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। विभिन्न खेलों में 2400 से अधिक पदक दांव पर हैं। प्रतियोगिताएं पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय सहित 6 अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही है, जबकि नई दिल्ली में साइकिलिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स की 3 तरह की स्पर्धाएं आयोजित हो रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में खेल संस्थाओं को मजबूत बनाया जा रहा है।
अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है और अब तक 3067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है, राजगीर में पहले से कराया गया है। और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया।
अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मुकाबलों और नतीजों की। एक रिपोर्ट।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले दिन राजगीर में कबड्डी के 2-2 मुकाबले खेले गए, जिनमें बालिका वर्ग में बिहार और असम का मुकाबला ड्रॉ रहा। बालक वर्ग में महाराष्ट्र ने राजस्थान को पराजित कर दिया। वहीं हरियाणा ने दोनों वर्गों में अपने अपने मुकाबले जीत लिए। पटना में खेले गए वॉलीबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग में पश्चिम बंगाल ने बिहार को 0-3 अंकों से पराजित कर दिया। इसी स्पर्धा में पुरुष वर्ग में बिहार की टीम उत्तर प्रदेश से हार गई। भागलपुर में 50 मीटर बालिका वर्ग की रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की तेजल राजेंद्र सालवे ने कंपाउंड क्वालिफाइंग दौड़ में 697 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र की ही वैदेही हीराचंद्र जाधव दूसरे स्थान पर रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज बिहार 4 प्रतियोगिताओं में शामिल होगा, जिनमें पटना में वॉलीबॉल, बेगूसराय में फुटबॉल, गया में खो खो और राजगीर में कबड्डी की प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित चावल की पहली 2 किस्में जारी की हैं। श्री चौहान ने कहा कि बढ़ती आबादी की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये किस्में बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए विकसित की गई है। एक रिपोर्ट।
पहली धान की किस्म DRR धन 100 कमला है, जो सांबा महेश्वरी किस्म से बनाई गई है। ये किस्म 15 से 20 दिन पहले पक जाती है और 25% ज्यादा उपज देती है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST1 है, जो खारे और क्षारीय मिट्टी में भी अच्छी उपज देती है और ऐसी स्थिति में 30% ज्यादा उत्पादन करती है। अगर इन दोनों किस्मों की खेती करीब 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाए तो देश में अतिरिक्त 45 लाख टन धान का उत्पादन हो सकता है। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने इन किस्मों को ऐतिहासिक कदम और कहा कि इनसे उत्पादन की लागत में कमी आएगी और उत्पादन बढ़ेगा।
किसान को फायदा है, तो किसान को फायदा नहीं है, जनता को भी फायदा है। बढ़ती हुई आबादी को अगर पूरी तरह से पोषण सुरक्षा देनी है, खाद्य सुरक्षा देनी है, तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।
ICAR ने कहा है कि ये देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अक्षित विद्यान के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
धान की किस्मों को विकसित करने वाली टीम में बिहार के डॉक्टर गजेंद्र समेत कई वैज्ञानिक शामिल हैं। भागलपुर जिले के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कुपोषण दूर करने के लिए एक गांव एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत विश्वविद्यालय के 22 कृषि विज्ञान केंद्र और 6 कॉलेज कार्य करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया समेत उत्तर पूर्व भाग के जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इस बीच विभाग के अनुसार कल से प्रदेश के मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का पूर्वानुमान है। इधर अररिया जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हल्की से मध्यम बारिश से शहर में कई स्थानों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर के आश्रम रोड में भारी जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में बाढ़ की आशंका को लेकर बाढ़ पूर्व तैयारियों के लिए सभी जिलों को सलाह जारी किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत की ओर से जारी सलाह में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर बचाव का पूर्वाभ्यास करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाढ़ की चपेट में आने वाले जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महामारी रोकथाम समिति का गठन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों के वेतन और पेंशन से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए शिक्षा विभाग ने नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति की है। ये पदाधिकारी संविदा और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति की भी निगरानी करेंगे। शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव सह निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में डाक टिकट क्लब खोले जाएंगे। चीफ पोस्टमास्टर रंजय कुमार ने बताया कि बच्चों में टिकट संग्रहण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्लब का सदस्य बनने के लिए 200 रूपये शुल्क रखा गया है। इससे बच्चों में सामान्य ज्ञान की जानकारी बढ़ेगी। पटना समेत देश भर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की परीक्षा के दौरान पुलिस ने फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर के पुलिस आयुक्त एसटी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में बिहार के 2 अभियुक्त शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में कल एक सड़क हादसे में बेगूसराय निवासी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बरौनी प्रखंड के अमरपुर पंचायत के सुजीत कुमार का पार्थिव शरीर आज बेगूसराय पहुंचेगा। मधुबनी जिले के जयनगर थाने में पदस्थापित एसआई संतोष कुमार को पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने निलंबित कर दिया है। एसआई के खिलाफ ये कार्रवाई भू और बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में की गई है। मधुबनी जिले में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 9 योजनाओं को मंजूरी मिली है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं में मिथिला हाट का विस्तारीकरण और मां सीता तथा प्रभु श्रीराम के प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना शामिल है। मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता 2025 में बिहार का प्रतिनिधित्व मधुबनी जिले की डॉक्टर शांभवी झा करेंगी। शांभवी ने कल निफ्ट पटना में आयोजित प्रतियोगिता में ये जीत हासिल की। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पुलिस ने एक एम्बुलेंस से 78 किलो गांजा जब्त किया है। मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मधुबनी जिले के रहिका थाना क्षेत्र की पुलिस ने लगभग 2.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार की सभ्यता संस्कृति की झलकियों के साथ खेलो इंडिया का रंगारंग आगाज। दैनिक जागरण लिखता है, पंचायत स्तर तक समन्वय समितियों का गठन करेगा महागठबंधन। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, पटना के पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड, इससे जुड़े लिफ्ट से सीधे इमरजेंसी में पहुंच सकेंगे मरीज। प्रभात खबर लिखता है, 6 से 59 माह के बच्चों में एनीमिया दूर करने पर स्वास्थ्य विभाग करेगा फोकस। आज अखबार ने लिखा है, सभी 81,000 सरकारी स्कूलों में हर माह होगी शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, कांग्रेस की कई गलतियों की जिम्मेदारी राहुल ने स्वीकारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार आज 4 खेल प्रतियोगिताओं में होगा शामिल। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। बिहार में भी होगी नई किस्मों से खेती। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा समेत उत्तर पूर्व जिलों में आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जायेगा। नमस्कार।